ओम शांति। आप सभी को कल भी बताया था कि क्लास के टाइम कोई भी भाई अथवा बहन अपना मोबाइल ऑन नहीं करें और मोबाइल को स्विच ऑफ करें। कभी कभी माताओं को अपना मोबाइल जल्दी स्विच ऑफ करने नहीं आता है। अगर नहीं आता तो एक दो की हेल्प से, अगर किसी का मोबाइल ऑन है तो वो क्लास में पीछे सबसे बाहर गेट के पास चले जाए। है किसका ऑन? जिसका ऑन है गेट के पास जाओ, दोनों बहने, ये दोनों बहनों को भेजो गेट के पास। मुरली में मोबाइल किया, ये सुनो श्रीनिवास भाई, इन दोनों बहनों को गेट के बाहर भेजो। सुनती क्यों नहीं माता? ये आपस में रूढ़वान करे मोबाइल, ये दोनों को भेजो शशिकर में, भेजो इन दोनों बहनों को। आपका मोबाइल जिसका ऑन है वो गेट के पास बैठ के मुरली सुने। उठो, ये माता को भी भेजो। और किसका है? सबको मोबाइल वाले, क्योंकि मुरली में आपके मोबाइल की घंटी बजती। दोनों को, भाइयों में किसका है मोबाइल ऑन? जिसका मोबाइल ऑन है या तो साइलेंस पे रखो या फिर गेट के पास जाओ, और यहां नहीं गेट के पास जाओ, ताकि आपकी आवाज, मोबाइल की आवाज जो है मुरली के बीच में नहीं आए। और किसका? आपका नहीं, किसी का भी नहीं। अगर किसी का भी बजेगा ना, फिर आपको बाहर खड़े होकर के प्यारे बाबा के महावाक्य सुनने होंगे, ठीक है ना? मंजूर है ना? उससे पहले ही आप बाहर जाकर के बैठो, ताकि आपके मोबाइल की आवाज किसी को डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम बच्चों ने बाप, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर के सतोप्रधान बने। सतयुग के अंदर सतोप्रधान थे, फिर धीरे धीरे बैटरी कम होते होते आकर के तमोप्रधान बने हैं। बाबा ने कहा कि आत्मा की बैटरी जो है पूरी नहीं खत्म होती, थोड़ी सी आकर के बचती है। फिर उसके बाद जब बाबा आते हैं, बाबा की श्रीमत से तुम बच्चे अपनी बैटरी को चार्ज करते हो। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो चार्जर से उसको चार्ज करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अपनी बैटरी को, आत्मा रूपी बैटरी को भी तुम बच्चों को चार्ज करना है। बाप से शक्ति लेकर के बाबा की श्रीमत पर चल के। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि यहाँ पर जब बैठते हैं तो आपस में भाई भाई की स्मृति रहे। फिर बाबा ने कहा, देखो पुरुषार्थ के बारे में, कि कई ऐसे बच्चे हैं अच्छा पुरुषार्थ करते हैं और 90% मार्क्स ले लेते हैं, कोई उससे कम लेते हैं, कोई तो बिल्कुल ही कम पुरुषार्थ करते हैं और बहुत कम मार्क्स लेते हैं, तो फिर रिजल्ट क्या होगी? वो जाकर के सतयुग के अंदर कम पद तो क्या, बाबा ने कहा कि वो जाकर के एकदम त्रेता में, लास्ट में आकर के बहुत कम पद पाएंगे। इसलिए बच्चों को भी पुरुषार्थ पर ध्यान देना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 31 जनवरी 2026। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने में, अथवा दीपक में ज्ञान का घृत डालने। आज का प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? शिव की बारात का गायन क्यों है? इसका उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भागकर जाता है। मूल वतन में भी जाते हैं तो आत्माओं का मनारा, मनारा में छत्ता, जैसे मधुमक्खी होती है ना उसका छत्ता होता है, उसको मनारा भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा अथवा छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का ही गायन। आज जब बाबा आते हैं बच्चों को ले जाते हैं, बाबा साथ में जाते हैं, आत्माएं साथ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ जाने के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने के, कौन सी पॉइंट, कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है, हम सबका पिता एक शिव बाबा है, हम उनके बच्चे आपस में भाई भाई हैं। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में भी सर्व शक्तियां थी, तुम विश्व पर राज्य करते थे, भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम आत्माएं अब फिर से देवताएं थे, तुम्हारा कुल डायनेस्टी था, तुम्हारा देवी देवता कुल व डायनेस्टी थी। तो बाबा कहते तुम विश्व पर राज्य करते थे, भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था, तुम पवित्र देवी देवता थे, तुम्हारा कुल व डायनेस्टी वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? बाबा कहते तुम बच्चे ही थे उस समय, तुम देवता थे, तुम ही निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे सर्वशक्तिमान बाप को याद कर तुम उनसे शक्ति ले रहे। बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद से शक्ति मिलती है। सुनो बहन, बीच में जो बैठी है तीसरे नंबर ये वाली, हाँ ध्यान से सुनो है। अच्छा तो इनको थोड़ा सा हिलाओ ये आराम से, हाँ इनको बोलो पीछे जाके बैठे बहन है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो बाबा कहते हैं अब तुम फिर निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, तुमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया है, उसमें जो सत्व प्रधान ताकत थी वह दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनना है, जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती, बैटरी की ताकत कम होगी तो मोटर फिर धीरे धीरे कम चलने लगती है, खड़ी हो जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, बाकी मशीनरी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी लेकिन बाबा कहते आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं क्योंकि उसका लाइट बुझ ना जाए, क्योंकि ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते। अब बाबा क्यों बता रहे हैं कि तुम आत्मा सर्वशक्तिवान थे, अब शक्ति कम हो गई तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को याद करो फिर से शक्ति ले सकते हैं, तो फिर उसको चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए। बाबा को क्यों याद करते हैं कि जो बाबा सर्वशक्तिवान है उनकी सर्व शक्तियां हमारे में आ जाए, क्योंकि तुम्हारी शक्ति कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है, एकदम शक्ति खत्म हो जाए तो बाबा के तेज शरीर भी ना रहे, इसलिए तुम्हारी शक्ति जो है कम हो गई है। पूरी कम नहीं होती, थोड़ी बचती है, बाबा कहते अगर एकदम खत्म हो जाए तो ये शरीर भी ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। संगम युग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती, संगम युग के अंदर फुल चार्ज करते हैं, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक धीरे धीरे कम होती जाती है। संगम युग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ा थोड़ा कम होती जाती है, त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो गई, और द्वापर में आकर के फिर क्या कहेंगे, रजो बने, और कलयुग में आकर के क्या कहेंगे, तमो बने। ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो क्योंकि तुम जानते हो, तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया। तमो प्रधान हुए, आत्मा के अंदर जो शक्ति थी वो भी खत्म हो गई, तो बाबा कहते ताकत का दिवाला निकल गया। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो जो भी देह और देह के संबंध हैं ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है, बाप पितु बेहद का वर्षा देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित बन गई है। हे बच्चों अब तुम मुझे याद करो, क्यों, क्योंकि मैं ऑल माइटी हूँ। हे बच्चों अब तुम मुझे याद करो, मैं ही ऑल माइटी हूँ, मेरे द्वारा ही ऑल माइटी राज्य मिलता। बाबा ने कौन सी बात कही कि बाबा ऑल माइटी हैं, ऑल माइटी बाप से बैटरी से और कनेक्शन रखने से आत्मा भी ऑल माइटी बनती है और ऑल माइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वे दैवी गुण नहीं है, सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने वाली, एक तो हो चुकी है और होने लगी है, अब फिर बैटरी भरती है, उनकी बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही, और तुम बच्चों की बैटरी क्या हो रहा है, भरती जा रही है ना, भर चुकी है, भर रही है, हैं, भर रहे है ना, किसी की ज्यादा किसके कम है। तो बाबा कहते हैं अब फिर बैटरी भरती है, सिवाय परम पिता के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज हो नहीं सकते। बैटरी कैसे भरती है, बाबा से योग लगाती है, सिवाय परम पिता के साथ योग लगाने के बगैर बैटरी चार्ज हो नहीं सकती। वह बाप ही एवर प्योर है, यहाँ सब हैं इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप कहते हैं एक को ही याद करना है, ऊंचते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। ऊंचते ऊंच कौन है, एक ही बाबा है और बाकी सब कौन है? रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता। वर्षा किससे मिलता है? केवल रचयिता बाप से। कि क्रिएटर बाबा बताते हैं, जो क्रिएटर हैं उनसे ही वर्षा मिलता है, रचना से नहीं मिलता है। रचना से क्या मिलता है? प्रेरणा मिलती है, मिलकर के सेवा करते हैं। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप। बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल में अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा क्या करे, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे। खुशी होती है ना, तो बाबा हमारे लिए कर रहे हैं, तो बाबा को कितना थैंक्स देना चाहिए। बाबा हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला पक्का है ना, अब हमारी नई दुनिया आई की आई। सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो, मैं एवर प्योर हूं, मैं कभी भी मनुष्य तन नहीं लेता। बाबा कहते मैं मनुष्यों जैसा जन्म नहीं लेता हूं। बाकी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए क्या करता हूं, इस तन में प्रवेश करता हूं, मैं कभी भी मनुष्य तन नहीं लेता हूं। और क्या नहीं लेते हैं? ना कभी दैवी तन, ना कभी मनुष्य तन, ना दैवी तन ना मनुष्य तन लेता हूं। बाबा कभी भी ना तो दैवी तन लेते हैं और ना ही मनुष्य तन लेते हैं। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं तो सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये 60 वर्ष के वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता। बाबा क्यों आते हैं, किसके लिए आते हैं? बाबा हम बच्चों के लिए आते, वो भी बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। और किस तन में आते? वो भी बूढ़े तन में। 60 वर्ष की आयु होती है तब इनके तन में आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब मैं इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर वन ऊंच से ऊंच भगवान है, फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, बाबा ने कई बार बताया कि सूक्ष्म वतन जो है सारे कल्प में नहीं होता। कब होता है? सूक्ष्म वतन संगम पर होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर हो नहीं सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता, सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। अब देखो कितना बड़ा राज, ये देवताएं संपूर्ण बन जाते हैं, उनका साक्षात्कार होता है। अब बाबा कहते बाबा के बच्चे भी जो बिल्कुल पवित्र बन जाते हैं उनका भी सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। बाबा कराते हैं क्योंकि वो सब एडवांस पार्टी के संपूर्ण पवित्र फरिश्ते हैं, तो उनका भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहां आकर स्वर्ग के मालिक बने। संगम पर क्या बनेंगे? फरिश्ते। लेकिन कैसे फरिश्ते? संपूर्ण पवित्र, फिर जाकर के सतयुग में मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते, ये भी शिव बाबा को याद करते। ब्रह्मा बाबा का पता है ना, विष्णु का चित्र देखते थे तो बाबा को लगता था कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा पुरुषार्थ करना, लेकिन कैसे कर सकता हूँ? बाबा की याद से। उनको याद नहीं करते, वो बनना है उसके लिए क्या करना है? शिव बाबा को याद करना है। और ये विष्णु बनते हैं तो ये भी तो समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया? लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? बाबा कहते देवताएं जो है वो कभी भी हिंसा नहीं कर सकते, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजा ही लेते हैं, कोई माने या ना माने। बाबा कहते कोई को समझाओ तो मानेंगे नहीं, लेकिन तुम जानते हो कि तुम राजा ही कैसे लेते हो? बाबा को याद करके बैठे बैठे कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन बाबा को याद करके राजा ही लेते हो, कोई माने या ना माने। गीता में भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझ एक बाप को याद करो। उनको तो देह है ही नहीं जो ममत्व रखे। अब देखिए देहधारियों को देह है, वो एक दूसरे में ममत्व रखते हैं। बाबा कहते बाबा को तो देह है ही नहीं जो कोई ममत्व रखे, तुम बच्चे ही उनको याद करते हो। उनको तो कोई देह है ही नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके तन में प्रवेश करता हूँ अथवा इनके तन का लोन लेता हूँ। मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दो। बाबा कहते नहीं तो मैं कैसे तुमको समझाऊंगा, इसलिए इनके तन में आकर के नॉलेज देता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं बीज रूप हूं ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है, और किसको पता नहीं कि सृष्टि की आयु कितनी। अब उनको कितना भी समझाओ वो लोग तो कह देते लाखों वर्ष ये है, लेकिन बाबा आकर के बताते हैं कि सृष्टि की आयु कितनी है। और किसको पता नहीं कि सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इसकी स्थापना पालना और विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए ना कि जहाँ रहते हैं और ये सृष्टि चक्र है, घूमता है, ड्रामा है, तो इसका भी तो पता होना चाहिए ना। मनुष्य ही पढ़ते हैं तुमको बेहद का बाप विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। जानवर तो नहीं पढ़ते हैं, जानवर थोड़ी पढ़ेंगे, ये है हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ा, किस लिए? विश्व का मालिक बनाने के लिए, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान किसी भी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता, भगवान किसी भी मनुष्य अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है, इनका नाम ही अलग है ना। अभी ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है, ब्रह्मा का शरीर और ब्रह्मा के तन की ब्रिकुटि, ये क्या है? अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना, बड़े जो बड़े बड़े जो होते हैं वो अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं, अकाल तख्त के आगे बैठते हैं, फिर अकाल तख्त के हम बैठ करके बाबा को याद करते हैं, फिर उसके बाद उसका वो फिर भी निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी बाप समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त है, अभी सब अपने अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, है कि नहीं। बाबा कहते सदा क्या करना है, अकाल तख्त पर, आत्माओं का अकाल तख्त क्या है, ब्रिकुटी है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, उनके पूछते आत्मा कहाँ है, फटाफट बता देंगे, इसकी आत्मा कहाँ है, फटाफट बता देते, वो तो पक्का करके बता देते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को क्या करना है, उस तख्त पर बैठने का अभ्यास करते रहना है। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं, अभी बाप समझाते हैं ये सब आत्माओं के अकाल तख्त है, आत्मा अकाल है जिसको काल खा न सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते, शरीर बदला तो आत्मा का तख्त भी बदल जाता है, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है, पहले छोटा तख्त होता है फिर बड़ा होता जाता, पहले आत्मा का शरीर छोटा है फिर धीरे धीरे शरीर बड़ा होता है फिर बड़ा होता जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा अकाल है, बाकी उसमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है, क्या कहते हैं दुनिया में कहते पाप आत्मा है पुण्य आत्मा है, फिर भी क्या कहते हैं कर्मों का फल है, कहते हैं ना अच्छा होगा तो कहेंगे इसके श्रेष्ठ कर्मों का फल है, अच्छा नहीं है तो कहेंगे ऐसे कर्म किए, तब तो कहते हैं ना कर्मों का फल है। आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती, बाबा पक्का करा रहे हैं कि आत्म स्थिति में रहना है। आज बाबा ने क्या पक्का किया, अकाल तख्त पर विराजमान होकर के बाबा से शक्ति लेनी है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, आत्मा का बाप तो एक है, ये तो समझना चाहिए ना। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात नहीं सुनाते, कहाँ बैठना है कहाँ याद करना है कैसे तुम शक्ति लेते हो, ये तो शास्त्रों में नहीं है ना। तो बाबा कहते ये बाबा शास्त्रों की कोई बात नहीं सुनाते हैं, ये बाबा शास्त्रों की बात क्या सुनाएंगे, शास्त्र आदि पढ़ने से तो वापस कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे, जैसे टिड्डियों अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना, जब देखते हैं ना एक मधुमक्खी का झुंड जाता है तो चारों तरफ क्या आवाज है, ऐसे भुर 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 आवाज आती है, और फिर जहाँ ये झुंड जाता है वहां पर बिल्कुल एकदम अंधेरा सा दिखाई देता है, क्योंकि पूरा एकदम जाल की तरह होता है, और मुख्य रानी जो होती है वो आगे होती है, उसके पीछे मधुमक्खी सब के सब झुंड बना करके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे मधुमक्खी का झुंड जाता है, देखा मधुमक्खी का झुंड देखा है, छत्ता देखा है, छत्ते को कभी हाथ लगाएंगे तो क्या करेगा मधुमक्खी आपके पास आके चिपक जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान रखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे मधुमक्खी का झुंड जाता है, मधुमक्खियों का भी क्वीन होती है, मधुमक्खी का उनकी क्वीन होती है, रानी होती है, उनकी पिछाड़ी सब जाते हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं जब बाप जाएंगे तो उनकी पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी, और बाबा कौन हुआ है, क्वीन हुआ है, साजन हुआ, तुम सब सजनिया है ना। तो बाबा कोई थोड़ी क्वीन बनेगा, बाबा साजन और आत्माएं सजनिया, कौन है सजनी हाथ खड़ा करो, भाई भी हाथ खड़ा करो है, आत्मा रूप में तो सब सजनी है ना। तो बाबा कहते हैं बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी, वहां मूल वतन में जैसे कि सब आत्माओं का मनारा, मनारा अथवा छत्ता होता है, यहाँ फिर मनुष्यों का झुंड है, मनुष्यों का झुंड तो फिर भी क्या होता है, अलग अलग बिखर जाता है। वहां जब आत्माएं जाती हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाती है, जैसे ना कोई छत्ता बन जाता है, ऐसे वहां पर छत्ते समान बैठ जाती है। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, शिव की बारात कहा जाता है ना। शिव की बारात में दिखाते ना कैसे कैसे थे, तो बाबा ने कैसे कैसे बच्चों को अपना बनाया है। दुनिया शिव को बाबा को ढूंढती है, और हम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, बाबा ने अपना बनाया और अपने साथ लेके जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है, फिर बाबा कहते बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो। बाबा के कौन है, बच्चे भी हैं, सजनिया भी हैं, और बाबा हमेशा याद कराते बाबा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर के बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर आत्मा वापिस जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएंगे तब पहले पहले कहाँ जाएंगे, शांति धाम में जाएंगे, फिर शांति धाम से फिर सतयुग में आएंगे। तो पहले पहले शांति धाम जाएंगे, वहां जाकर सब निवास करते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। और सबसे पहले पहले कौन जाएंगे बताओ, सबसे पहले पहले कौन जाएंगे, जो जाएंगे हाथ खड़ा करो, कौन जाएंगे। ऐसा नहीं कहो चलो कोई बात नहीं है, बीच में आ जाएंगे या लास्ट में आ जाएंगे, त्रेता के शुरू में आएंगे। जो त्रेता के शुरू में आएंगे वो हाथ खड़ा करो, कोई नहीं। जो सतयुग के शुरू में आएंगे वो हाथ खड़ा करो, अच्छा। जो श्री कृष्ण के साथ खेलेंगे वो हाथ खड़ा करो, माताएं नहीं खेले, ये देखो ये नहीं खेलेंगे। हाथ क्यों नहीं किया, श्री कृष्ण के साथ खेलो, माताओं को तो श्री कृष्ण ज्यादा प्यारा लगता है, भाइयों से भाइयों को फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन माताएं तो श्री कृष्ण को छोड़ेंगी नहीं। यहाँ जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण बना दो ना, कोई भी माता या बहन ऐसी नहीं होगी जो श्री कृष्ण को हाथ ना लगाए। भाई भी नजदीक जाते हैं लेकिन माताएं तो ना हाथ लगाने दी तो दौड़ दौड़ करके और अपना रास्ता निकाल लेती है। तो सब माताएं खड़ी करो, जो श्री कृष्ण के साथ हाथ खड़ा करो, जो श्री कृष्ण के साथ खेलेंगे खेलेंगे तो हाथ खड़ा करो। भाई तो खेलेंगे ही लेकिन माताओं को भी पक्का करना है ना, तो शुरू शुरू में आना है ना, ठीक है। तो बाबा कहते हैं फिर धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है, तुम भी पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़े, बाबा के साथ जाएंगे। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है, राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे तो नहीं आते हैं, वहां है सब आत्माओं की दुनिया, वहां से फिर नंबर वार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप ही स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए बाबा क्या करते, पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ढेर है। बाबा के टाइम पर तो बहुत कम थे, बाबा ने पहले भी कई बार बोला था आगे चलकर के बहुत बच्चे आएंगे, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ढेर है। अब गिनती करने बैठते हैं कभी आज इतनी है, फिर दूसरे दिन देखो तो और ज्यादा है, तो बढ़ते ही जाते ना, तो बाबा कहते ढेर के ढेर है, ढेर बच्चे आएंगे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ढेर हैं, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तब तो इतने ढेर आए हैं, तब तो ढेर बने हैं। ब्राह्मण कितने होंगे और कच्चे कितने पक्के कितने, अब ये लिस्ट निकाल सकते हैं, कच्चे कितने पक्के कितने। आगे हम फॉर्म बनाते थे, रेगुलर कौन है, इरेगुलर कौन है, वो भी होता था, लेकिन अभी तो इरेगुलर भी क्या है, मोबाइल से मुरली सुन लेते हैं, तो मुरली सुनने वाले रेगुलर तो हो गए ना, चाहे वो आए क्लास में या नहीं आए। तो बाबा कहते हैं कच्चे कौन है, पक्के कौन है, कोई तो 90% मार्क्स लेते हैं, कोई तो 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे। अब बाबा ने बता दिया कच्चे कौन है जो 10 नंबर लेते हैं, और पक्के 90, 80, 70 वो पक्के हैं, 10 वाले, 10 वाला तो कोई है नहीं, कच्चे होंगे तो त्रेता अंत में आएंगे। तो बाबा कहते हैं कोई 10 मार्क्स लेते हैं तो गोया कच्चे ठहरे ना, तुम्हारे में भी जो पक्के बच्चे हैं वे जरूर पहले आएंगे और कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये अभी बाप ने बताया है, पहले तो हम उल्टा समझते आए थे, कौन सी बात कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग की आयु इतनी है, सत्युग की इतने, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। तो बाबा कितनी सब बातें कैसे तुम बच्चों ने उल्टी समझ ली, पहले तो तुम उल्टा समझते आए थे कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है ये तो पूरा 5000 वर्ष का चक्कर है, आधा कलप है राम का राज्य और आधा कलप है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा कैसे होता, अब लाखों वर्ष को तो आधा आधा नहीं कर सकते ना। तो बाबा कहते लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी ना हो सके। दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई, दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है, ये बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, शिव बाबा के शरीर का है कि नहीं, शरीर का थोड़ी है, वो तो आत्मा का है, शिव बाबा है, और बाकी जितने नाम है वो कोई शरीर के नहीं है, चाहे कैसा भी कहो, सोमनाथ है और बबुलनाथ है, जो भी हैं वो बाबा के गुण और कर्तव्य के आधार से रखे हैं। तो बाबा कहते शिव बाबा के शरीर का कोई भी नाम नहीं है, ये शरीर तो इस दादा का है, ये ब्रह्मा नाम भी इस दादा के शरीर को दिया, ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है, बाबा ने तो थोड़े समय के लिए लोन लिया है, बाबा कहते मेरा थोड़ी है, मैंने तो थोड़े समय के लिए लोन ली, और बाबा कहते मैं थोड़ी सारा दिन बैठा रहता हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ, भक्तों के पास भी जाना पड़ता है, दुनिया में भी चक्कर लगाना पड़ता है, अब जब बच्चों के पास आना है इसमें प्रवेश करता हूँ फिर चला जाता हूँ, ये तो लोन लिया है। बाबा कहते हैं बाबा है कहाँ, बाबा ने तो थोड़े समय के लिए ये लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको तो मुख चाहिए ना, यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ, माउंट में गौमुख है ना, कईयों ने देखा होगा, देखा कईयों ने है, गौमुख जाना 700 स्टेप्स नीचे जाना और 700 सीढ़ी फिर ऊपर आना, इतना है। पहले तो बहुत कच्ची थी, अभी तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन जो एक बार देखने जाता है 3 दिन क्या करता है, विश्राम है। तो बाबा कहते यहाँ ही गौमुख देख लिया तो वहाँ क्या देखेंगे, 3 दिन तक वो विश्राम करते रहेंगे, फिर क्या करेंगे, शरीर की मसाज भी करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं गौमुख बना तो दिया है, लेकिन गौमुख हमारे सामने बैठा है, यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है, पहाड़ों से पानी तो जहां तहां आता है, गौमुख में दिखाते हैं उसके मुख से पानी सदा आता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। तो ये पहाड़ों से कहीं ना कहीं से पानी आता है, पानी को तो बहने का रास्ता चाहिए, जहां भी रास्ता मिलेगा वहां आएगा ना, तो गौ के मुख से वहां पर पानी सदा ही बहता रहता है, तो वो गौमुख उसका नाम रखा। बहुत टूरिस्ट जाते हैं वहां पर, पहाड़ों से पानी तो जहां तहां आता रहता है, फिर गौ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता रहता है, उसको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहां से आई? यहां तो गंगा नहीं आई, गंगा आती है पहाड़ों से, बाबा कहते ये ऊपर से पानी आया। ये सब है झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा है सब संसार। इस झूठ खंड में अभी सब आत्माएं पतित बन जाते हैं, तब तो बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाने के लिए इस पुरानी दुनिया में आओ और हमको पावन दुनिया में ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर बैठ काले बन पड़े, मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन पड़े हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, कोई बहुत ऊंचा होता है गरीब बन जाता है तो उसको याद दिलाते तुम क्या थे भी ये हो गए, और वो भी कहते मैं इतना ऊंच था, अभी भी कई मिलेंगे हम ये थे हम ये थे, और अभी क्या है। तो बाबा कहते तुम तो कितने ऊंच थे ना। बाबा बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना, अब स्वर्ग को याद करो, हर एक अपना अपना हमारा क्या पद था बाबा कहते वो याद करो, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते। अब बाबा हमेशा किसको समझाते थे, बाबा जो है हमेशा बच्चों से बात करते थे, बाहर वाला दुनिया को नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों का काम है बाहर वालों को समझाना, इसलिए बाबा कहते बाप बच्चों को समझाते हैं सारी दुनिया को नहीं समझाते हैं, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। तुम ही जाकर के औरों को बताओ कि हम सब आत्माओं का बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न, जंगल में जाओ तो क्या होगा है, जाएंगे तो क्या करेंगे, जंगल में जाओगे कुछ भी कितना भी बचाव करो एक ना एक कांटा तो लगेगा ही, पेड़ को हाथ लगाएंगे कहीं चल रहे हैं कभी पांव के पास कभी रास्ते में कांटा होता है ना। तो बाबा कहते दुनिया भी ऐसी होगी, कहीं भी जाओ कोई ना कोई विकार का कांटा लग जाता है। बाबा कहते इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल, सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहाँ भगत भी बहुत है, वेजिटेरियन भी है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते, भल कैसे भी भक्ति करते विकारों में तो जाते हैं ना, फिर कोई कोई ऐसे भी हैं, ऐसे बहुत हैं जो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी भी छींची खाना नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, वह हद का सन्यास मनुष्य को कराते, और बाबा आकर के बेहद का सन्यास कराते, वह हद का सन्यास मनुष्य कराते। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में ये श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते क्या? सन्यासी बनते हैं घर बार छोड़ते हैं, सतयुग में तो घर बार छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वहां घूमो फिरो खाओ पियो मौज करो फिर अपनी राजधानी में राज्य भी करो, तो वहां कोई दुख नहीं है तो क्यों छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं, उनको तो है हद का सन्यास, लौकिक में हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम कौन सा सन्यास करते हो? सारी दुनिया का, मित्र संबंधी आदि का बुद्धि से संन्यास करते हो। ऐसा नहीं कि मित्र संबंधी छोड़ देते हो, घर बार छोड़ देते हो, कारोबार छोड़ देते हो, लेकिन बुद्धि से वैराग्य वृत्ति रहती है। तुम्हारा बुद्धि से है संन्यास, तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी। तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मन मना भाव मध्याजी भाव, तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही बाबा कहते हैं, ये वही क्या करना, बाबा को याद करना, मन मना भाव मध्याजी भाव, तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है, संगम युग पर ही है। मैं संगम युग पर ही आकर सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे संगम पर ही सीखे हुए, सतयुग में आने से पहले राजयोग जरूर उससे पहले संगम युग पर ही सीखे होंगे। ये सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीत समझकर निश्चय करना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी बच्चे होते हैं, समझते कुछ हाया करते हैं, बाद में कहेंगे मैंने तो ऐसे कह दिया था। फिर बाबा कहते पहले समझो, बुद्धि में बैठे, निश्चय बुद्धि हो, तब जाके पुरुषार्थ करो। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करने चाहिए। ये कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं, ये सारी ज्ञान की बातें, आत्मा समझना और मन मना भाव होना, बाबा कहते कोई मनुष्य नहीं कह सकता, ये कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं। ये है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, है भगवान के। ये है श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की, बाकी सब है मनुष्य मत। और मनुष्य मत से क्या होता है, गिरते ही जाते, मनुष्य मत से गिरते ही आते हो। अब श्री मत से तुम चढ़ते हो, मनुष्य मत से क्या हाल हो गया है, कहां से कहां आके पहुंच गए। अब श्री मत से तुम चढ़ते हो, बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह नरकवासी मनुष्य की मत है। दैवी मत मिलती है स्वर्गवासी बनने के लिए, और मनुष्य की मत मिलती है नरकवासी बन ही जाते बनने के लिए, क्या वो तो बन ही जाते हैं। जिसको रावण की मत कहा जाता है, रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। क्या क्या है रावण राज्य में, चारों तरफ माया का पॉम्प है, बहुत सुंदर लगती है, सुंदर लगती है ना, ये भी इतनी अच्छी है, वो भी जगह अच्छी है, चलो इसको देख ले, उसको देख ले, देख लो भल, लेकिन है तो रावण का राज्य ना। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, इतना जबरदस्त है, क्या करता है बच्चों को भी अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है ना, फिर खींच जाते हैं, फिर सोचते वही अच्छा है, फिर बुद्धि में याद आता है नहीं नहीं बाबा जो हमको मालिक बना रहे वो बनना है, तो इसलिए बाबा कहते ये भी ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं जिसको रावण मत कहा जाता है, रावण राज्य भी कोई कम नहीं, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। ये बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर है देवताओं का पवित्र राज्य, वहां बहुत सुख होता है। अभी रावण का राज्य है, फिर क्या होगा, फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहां पर क्या होगा याद करो, है वहां पर बहुत सुख होगा, वहां बहुत सुख होता है, स्वर्ग की कितनी महिमा है। फिर कहते हैं ना स्वर्ग पधारा, अब यहाँ रहा है नरक में, कि क्या कह देते हैं लौकिक में, यहाँ तो कहेंगे देह छोड़ा है तो दूसरा शरीर लेगा, और लौकिक में क्या कहते वो स्वर्ग सिधारा, उनको बोलो फिर तुम नरक का खाना क्यों खिलाते हो। नहीं नहीं, ये आत्मा को ये भूख थी, आत्मा ये चाहती थी, हम उसको खिला रहे हैं, है वो गया स्वर्ग, फिर यहाँ का क्यों खिलाते हो। लेकिन उनको पता नहीं है कि स्वर्ग है कहाँ। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा। कभी कभी बाबा कहते उनको समझाओ, अगर वो स्वर्ग में गया तो खुश होना चाहिए। अगर कभी कहते ना स्वर्ग में गया, किसी को पहले शुरू में निमंत्रण देते थे ना स्वर्ग में चलने, कहते नहीं 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 हमको स्वर्ग में नहीं जाना। वो समझते स्वर्ग में चलना में देश न्यारा होना, देश छोड़ना, तो स्वर्ग के नाम से ही वो डरते थे, कहते नहीं नहीं हम सब यहाँ ही ठीक है। बाबा कहते अब नई दुनिया में जाना वो बताने का, तो स्वर्ग में गया तो बाबा कहते जरूर नरक में था, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। अभी स्वर्ग है कहाँ, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते बाबा ये जो बातें समझाते किसी भी पुस्तक में या शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं और नॉलेज के साथ आत्मा भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती। जब मोबाइल या कोई चीज चार्ज करने रखते हैं, लिंक टूटता है तो फिर चार्ज नहीं होता है। तो बाबा कहते आत्मा की बैटरी भरती है, फिर माया क्या करती है, माया लिंक तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य स्थान, पहला है मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना, पक्का ब्राह्मण बनना। बाबा ने कहा ना पक्का ब्राह्मण की निशानी 90% मार्क्स, कम लेगा तो कच्चा हो जाएगा, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है, सतु प्रधान बन बाप के साथ ओढ़कर जाना है, पीछे नहीं बाबा के साथ, सतु प्रधान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता। ये सब बच्चों पर आधारित है, प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है, आपकी सत्यता पारस के समान है, जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को प्रकृति को समय को सर्व सामग्री को सर्व संबंधों को संस्कारों को आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। कितनी बातें कही फिर रिपीट करती हूं। आपकी शक्ति अच्छा, जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, पहला आत्मा को, दूसरा प्रकृति को, तीसरा समय को, चौथा सर्व सामग्री को, पांचवा सर्व संबंधों को, छठा सर्व संस्कारों को, सातवा आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। स्लोगन, योगी तो आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्मा वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। अव्यक्तिशारी इस आज का ये लास्ट इस महीने का, फिर फरवरी से दूसरा अव्यक्तिशारा शुरू होगा। तो इस महीने का जो चल रहा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बहुतों ने यह अनुभव भी किया होगा। स्वदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो, तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कार के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे, तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्रों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। अपने कितने प्रकार के चक्रों से छूटना है, तब जाकर के अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार के चक्रों से छुड़ाकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति। अच्छा, जो भाई बहने शांति वन से आए, एक रात के लिए वहां खड़ा करें। अच्छा ठीक है, आप सबको बता दें, सभी का नाश्ता और दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है। नीचे किसी को भी नाश्ता या नहीं करना है, नाश्ता करना ऊपर के डाइनिंग हॉल में। नीचे स्थान नहीं है क्योंकि नीचे कुछ कारोबार चल रहा है, इसलिए जो भी भाई बहने हैं सबको नाश्ता ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में ही करना है। नीचे कोई नहीं खड़े रहेंगे, अगर कोई खड़े होंगे तो दूसरे भाई बहने आपको फिर से ऊपर ही भेजेंगे, इसलिए पहले से ही आप सबको नाश्ते के लिए ऊपर ही जाना है। अच्छा, जो भी मधुबन में सेवाधारी, जो केवल मधुबन में सेवाधारी ठहरे पार्टी के भाई बहने, और जो कल जा रहे हैं, कल या परसों जा रहे हैं, और डबल विदेशी भाई बहने जो कल या परसों जा रहे हैं, वो अपने रिटर्न जर्नी की टोली, डबल विदेशी सुबह 8:30 से 10 बजे के अंदर रिटर्न जर्नी की टोली ट्रॉली डिपार्टमेंट से प्राप्त करेंगे, और सेवाधारी जो हैं जाने वाले वो अपने वापस जाने की टोली 5:00 से 6:00 के बीच में ट्रॉली डिपार्टमेंट से प्राप्त करेंगे। बाकी जो एक रात के लिए आए, एक दिन के लिए, वो शांतिवन से लेंगे, वो यहां से नहीं लेंगे। जो यहां ठहरे हुए, जो यहां ठहरे वो हाथ खड़ा करें, जो केवल यहां ठहरे, एक रात के वाले नहीं। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर कल बाबा का दिन है, कल बाबा का दिन है और बाबा मिलन का दिन है, उसके लिए सूचनाएं आपको कल ही बताई जाएंगी। फिर से अभी भी बता देते हैं, कल 5:00 से 6:00 सूर्य भाई का क्लास होता है, 6:00 से 6:30 बजे योग, और 6:30 बजे से अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली का ट्रांसमिशन होता है। नीचे शांतिवन में भी गुजरात जोन का सेवा का टर्न है, बहुत से भाई बहने आ चुके हैं, और भी जो भी भाई बहने जाते हैं उनको भी ध्यान से जाना है। और 3:00 बजे से डायमंड हॉल के गेट खोले जाते हैं। डबल विदेशी भाई बहनों के लिए बाबा मिलन के डायरेक्शन कल देंगे। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे. नाउ वी सिट इन बाबा'स रिमेम्बरेंस. आफ्टर दैट ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे बैक. टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड. डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स प्लीज रेज योर हैंड. ओके, आफ्टर मेडिटेशन ऑल विल बी सीटेड बैक एंड टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड. ओम शांति.
तेरे उड़ आए पास तेरे उड़ आए.